नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राफाल लड़ाकू विमान सौदे को सही ठहराया, कहा इससे देश की सुरक्षा और वाणिज्यिक हित संरक्षित हुए। श्री जेटली ने सौदे की जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराने से इनकार किया। उच्चतम न्यायालय ने राफाल सौदे में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग संबंधी याचिकाएं खारिज की, कहा इस सौदे में निर्णय लेने की प्रक्रिया पर कोई संदेह नहीं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज राफाल सौदे और अन्य मुद्दों पर हंगामे के बाद दिनभर के लिए स्थगित। अशोक गहलोत राजस्थान के नए मुख्यमंत्री और सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा उनकी सरकार ने दक्षिणी भारत के विकास के लिए कई संपर्क परियोजनाएं शुरू की। इस वर्ष का ज्ञानपीठ पुरस्कार जाने माने अंग्रेजी लेखक अमिताभ घोष को, और पीवी सिंधु तथा समीर वर्मा वर्ल्ड टूर फाइनल्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे। समाचार संध्या के साथ मैं निखिल कुमार। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राफाल लड़ाकू विमान सौदे को सही ठहराया है। श्री जेटली ने कहा है इससे देश की सुरक्षा और वाणिज्यिक हित संरक्षित हुए हैं। उन्होंने सौदे की जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराने से इनकार किया। वित्त मंत्री ने कहा राफाल लड़ाकू विमान सौदे से भारत की सुरक्षा और वाणिज्यिक हित दोनों ही संरक्षित हुए हैं। श्री जेटली ने कहा
सिक्योरिटी इंटरेस्ट
सुरक्षा हित के तहत इससे सेना की लड़ने की क्षमता में वृद्धि हुई है और वाणिज्यिक हित के तहत इस सौदे से विमान और हथियार युक्त विमान दोनों की वास्तविक कीमतें 2007 और 2012 में किए गए सौदे से काफी कम है। इस बारे में हमने सीलबंद लिफाफे में संकेत दिया है और कई बार सार्वजनिक रूप से भी कहा है।
वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि इस सौदे के बारे में बहुत सी झूठी बातें फैलाई गईं, लेकिन ऐसी बातें अधिक समय तक नहीं टिक पाती हैं और यही कारण है कि ऐसा करने वालों को हर तरह से हार मिली है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन ने राफाल सौदे के बारे में उच्चतम न्यायालय के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि इस सौदे की जांच की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने फैसले का हवाला देते हुए कहा कि भारत अपनी रक्षा तैयारियों में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ सकता। श्रीमती सीतारामन ने कहा
ऑल द थ्री हेड्स
याचिका में उठाए गए तीनों मुद्दों पर न्यायालय ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया है। न्यायालय के इस फैसले के बाद यह कोई मुद्दा नहीं रह गया है।
थ्रू द कोर्ट लेट रेस्ट।
इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय में सरकार के बयान के अनुसार विमानों की कीमत के बारे में सीएजी और संसद की लोक लेखा समिति को जानकारी दी गई है। श्री गांधी ने लोक लेखा समिति के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का हवाला देते हुए कहा कि कीमत के बारे में इस प्रकार की कोई रिपोर्ट लोक लेखा समिति में पेश नहीं की गई है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा
और खारगे जी पीएसी कमेटी के चेयरमैन हैं पार्लियामेंट में, और आप लोग खारगे जी से सीधा पूछ लीजिए क्या सीएजी रिपोर्ट पीएसी कमेटी में आई, नहीं आई, पार्लियामेंट में रखी गई, और इन्होंने जो पीएसी के चेयरमैन हैं इन्होंने सीएजी रिपोर्ट अपनी जिंदगी में देखी है, हाँ या ना, पूछ लीजिए।
उच्चतम न्यायालय ने राफाल सौदे में कथित अनियमितताओं को लेकर सीबीआई को एफआईआर दायर करने का निर्देश देने की मांग वाली सभी याचिकाओं को आज खारिज कर दिया। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अरबों रुपए के इस सौदे में निर्णय लेने की प्रक्रिया पर आशंका नहीं की जा सकती। पीठ ने यह भी कहा कि किसी निजी पक्ष के साथ व्यापारिक पक्षधरता करने का कोई ठोस सबूत भी उपलब्ध नहीं है। पीठ ने कहा कि लड़ाकू विमानों की खरीद प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाया गया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि कीमत से संबंधित व्यापक ब्यौरों को निपटाना न्यायालय का काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि राफाल पर उच्चतम न्यायालय का फैसला झूठ की राजनीति पर एक तमाचा है। नई दिल्ली में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने मांग की कि लोगों को गुमराह करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय ने राफाल सौदे की जांच वाली याचिका को खारिज कर सरकार के रुख को साबित किया है। एक ट्वीट संदेश में श्री राठौड़ ने कहा कि इससे सच की जीत हुई है। इधर कांग्रेस ने कहा है कि वो राफाल सौदे में जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति की मांग करती रहेगी। संसद से बाहर मीडिया से बातचीत में पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने कहा कि राफाल सौदे पर उच्चतम न्यायालय के आज के फैसले को कांग्रेस की नाकामी के रूप में नहीं देखना चाहिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
अरे अजय भाई, आपका बेटा राहुल ने दिखाई दिया आज?
भारद्वाज जी वो किचन में है, खाना बना रहे हैं।
किचन में क्यों, कोमल बिटिया का है?
कोमल बेटी तो बाहर है, कुछ घर का सामान वगैरह लेना था तो दफ्तर से लेती आएगी।
मतलब बेटी बाहर और बेटा किचन में। अजय जी ये क्या कर रखा है?
कुछ खास नहीं जी, बेटियों और बेटों को बराबर बना रखा है।
बेटों और बेटियों में फर्क क्या करना, बेटियों के पंखों को खुलने दीजिए, उन्हें उड़ने दीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
अमर
कब क्या हुआ?
पापा को हार्ट अटैक आया है। वॉलेट कहाँ गया? एयरपोर्ट पे एंट्री कैसे होगी बिना आईडी?
एक काम कर, अपना फोन दे, जल्दी से अपना आधार नंबर डाल।
यार ये एम आधार चलेगा?
अरे दौड़ेगा दौड़ेगा,
चल चल फटाफट
संभाल के जा। जी पाजी,
ये आधार कार्ड अगर खो जाए तो इतनी जल्दी मिल जाता है क्या, वो भी मोबाइल पे?
हाँ पाजी मिल जाता है।
ओ यार ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं।
तो अभी सोच लो, फायदे में रहोगे पाजी।
एम आधार डाउनलोड करो कभी भी कहीं भी।
समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार तीसरे दिन राफाल लड़ाकू विमान और अन्य मुद्दों पर शोरगुल के कारण बाधित रही। लोकसभा में सत्ताधारी भाजपा के सदस्यों ने राफाल मुद्दे पर सरकार के खिलाफ आरोप लगाने के लिए कांग्रेस और इसके अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाए। राफाल सौदे की न्यायालय की निगरानी में जांच के लिए दायर याचिका को आज उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज कर देने के बाद सत्ताधारी पक्ष के सदस्य श्री गांधी से सदन में माफी की मांग करने लगे। विपक्षी सदस्य भी सरकार विरोधी नारे लगाकर मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराने की मांग करने लगे। शोरगुल के बीच अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सदन की कार्यवाही पहले दोपहर तक और फिर दिनभर के लिए स्थगित कर दी। लोकसभा में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से राफाल मुद्दे पर जनता को गुमराह करने के लिए लोकसभा तथा राष्ट्र दोनों से माफी मांगने की मांग की। राज्यसभा में भी भाजपा सदस्यों ने श्री राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाए, जिसके विरोध में कांग्रेस के सदस्यों ने भी नारेबाजी की और मामले की जांच समिति से कराने की मांग की। सदन के नेता और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अध्यक्ष से प्रश्नकाल स्थगित कर राफाल मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की। शोरगुल के बीच उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही पहले 11:30 बजे तक और फिर बाद में दिनभर के लिए स्थगित कर दी। दोनों सदनों की बैठक अब सोमवार को होगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत राजस्थान के नए मुख्यमंत्री और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री होंगे। राज्य के मनोनीत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने आज जयपुर में पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात की। इसके बाद पार्टी के एक शिष्टमंडल ने राजभवन में राज्यपाल कल्याण सिंह से भेंट की, जिसमें श्री गहलोत, श्री पायलट और श्री सीपी जोशी तथा कुछ अन्य नेता शामिल हुए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ 17 दिसंबर को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में होगा। उधर मिजोरम में श्री जोरमथंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट सरकार को कल शपथ दिलाई जाएगी। आइजोल में श्री जोरमथंगा के नेतृत्व में पार्टी शिष्टमंडल की राजभवन में राज्यपाल के राजशेखरन के साथ बैठक में यह फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने पिछले 4.5 वर्षों में देश के दक्षिणी राज्यों में विकास सुनिश्चित करने के लिए कई संपर्क परियोजनाएं शुरू की हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केरल के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद में उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष के दौरान केवल केरल में ही 35 अरब रुपये की लागत वाली 19 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था 4 वर्षों में दुनिया की तेजी से विकास की ओर अग्रसर अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गई है। श्री मोदी ने कहा कि 2014 में जब उन्होंने सत्ता संभाली थी तो देश की अर्थव्यवस्था बेहद नाजुक स्थिति से गुजर रही थी। सरकार ने आज कहा कि पिछले महीने के अंत तक लगभग 1 खरब 30 अरब रुपये की वस्तु और सेवा कर चोरी के 3,000 से अधिक संदिग्ध मामलों की पहचान की गई है। लोकसभा में आज एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने बताया कि इस वर्ष अप्रैल से नवंबर की अवधि में लगभग 80 अरब रुपए वसूल किए गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एक दिन की यात्रा पर कल गुजरात जाएंगे, जहां वे नर्मदा जिले में केवड़िया में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखेंगे। राष्ट्रपति के साथ गुजरात के राज्यपाल ओपी कोहली, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और रेल मंत्री पीयूष गोयल भी रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की आज मुंबई में नवनियुक्त गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में कोई निर्णय नहीं लिया गया, लेकिन बोर्ड ने रिजर्व बैंक के संचालन की रूपरेखा जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया और फैसला किया कि इस मुद्दे पर और चर्चा की जरूरत है। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं।
अरे भाई तुषार, व्हाट्स हैपनिंग?
अरे भाई, अपने बेटर फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इसका फायदा बाद में हमें ही तो मिलेगा।
अरे मुझे भी बता यार ऐसी इन्वेस्टमेंट के बारे में।
बस मेरी तरह अपना एडवांस टैक्स समय पर जमा कर दे।
उससे क्या होगा भाई?
तुझे पता है हमारे ही इनकम टैक्स से तो विकास को नई गति मिलती है, और जो हमारे गली मोहल्ले से लेकर देश के कोने कोने तक फैलती है, और उसका फायदा किसको मिलता है? हमें ही तो।
ये बात तो है भाई, ईमानदारी से दिए इनकम टैक्स का फायदा हमें ही तो मिलता है।
तो आइए मिलकर हम करें नए भारत का निर्माण। समय पर टैक्स देकर करें अपना योगदान। याद रखें 15 दिसंबर 2018 एडवांस टैक्स की तीसरी किश्त को जमा करने की अंतिम तारीख है।
ये आकाशवाणी है। इस वर्ष के ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए अंग्रेजी के जाने माने लेखक अमिताभ घोष को चुना गया है। अपने उपन्यासों में श्री घोष ने इतिहास को आधुनिक युग के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है। उनके मशहूर उपन्यासों में से शैडो ऑफ लाइन्स, दी ग्लास पैलेस, रिवर ऑफ स्मोक्स और फ्लड ऑफ फायर शामिल हैं। श्री घोष को पद्मश्री और साहित्य अकादमी पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। पीवी सिंधु और समीर वर्मा वर्ल्ड टूर फाइनल्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स के ग्रुप ए में आज पीवी सिंधु ने अमरीका की बेवन झांग को 21-9, 21-15 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। सेमीफाइनल में कल उनका सामना थाईलैंड की रत्चानोक इंथनोन से होगा। पुरुष वर्ग में भी समीर वर्मा ने थाईलैंड के कैंटाफोन वांगचारोन को 21-9, 21-18 से हराकर दूसरी जीत दर्ज की। सेमीफाइनल में कल समीर का मुकाबला चीन के शी युकी से होगा। पर्थ में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन आज 6 विकेट पर 277 रन बना लिए थे। ऑस्ट्रेलिया के मार्कस हैरिस ने 70, ट्रेविस हेड ने 58 और एरोन फिंच ने 50 रन बनाए। भारत के लिए ईशांत शर्मा और हनुमा विहारी ने 2-2 विकेट लिए। भारत एडिलेड में पहला टेस्ट मैच जीतकर 4 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा है कि देश में खेल कूद के माहौल में काफी बेहतरी आई है। आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह में श्री राठौड़ ने कहा कि सरकार की खेलो इंडिया योजना से देश में क्रांति आ गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत हर साल 1000 युवा खिलाड़ियों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी।
इस खेलो इंडिया कार्यक्रम में हर साल हम 1000 खिलाड़ियों को चुनेंगे और उनको उसी तरह से 5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप हर साल 8 साल तक देते रहेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को उत्तर प्रदेश के रायबरेली में आयोजित एक समारोह में रायबरेली फतेहपुर बांदा खंड की चौथी सड़क का उद्घाटन करेंगे। 133 किलोमीटर लंबे इस खंड के चौड़ीकरण के कार्य में लगभग 5,58,00,00,000 रूपये की लागत आई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है मनोज पाठक।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज कारोबार के अंत में 33 अंक बढ़कर 35,963 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 14 अंक बढ़त के साथ 10,805 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 22 पैसे कमजोर होकर ₹71.90 दर्ज हुआ।
आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों में कल भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण तटीय जिलों कृष्णा, गुंटूर, प्रकाशम और नेल्लोर में दूरदराज के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने जिला अधिकारियों को सतर्क रहने और एहतियाती उपाय करने का निर्देश दिया है। मछुआरों को वर्षा के दौरान समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राफाल लड़ाकू विमान सौदे को सही ठहराया है। उन्होंने कहा है कि इससे देश की सुरक्षा और वाणिज्यिक हित संरक्षित हुए हैं। श्री जेटली ने सौदे की जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराने से इनकार किया है। उच्चतम न्यायालय ने राफाल सौदे में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग संबंधी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। न्यायालय ने कहा है कि इस सौदे में निर्णय लेने की प्रक्रिया पर कोई संदेह नहीं है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही राफाल सौदे और अन्य मुद्दों पर हंगामे के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। अशोक गहलोत राजस्थान के नए मुख्यमंत्री और सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने दक्षिणी भारत के विकास के लिए कई संपर्क परियोजनाएं शुरू की हैं और पीवी सिंधु तथा समीर वर्मा वर्ल्ड टूर फाइनल्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।